ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुनः आप सभी दो दिन से इस ग्लोबल समिट 2023 डिवाइन विजडम फॉर न्यू इरा भिन्न भिन्न सेशंस में कुछ ना कुछ विशेष नई विजडम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और अभी भी आपने एक सुंदर दृश्य देखा, डिवाइन पावर किस प्रकार से आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करती है। हमारा इस समय का विशेष फर्स्ट प्लेनरी सेशन गॉड्स विजडम फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इस सेशन के डिग्निटरीज और आप सभी सारे भारत से जो विशेष इस समिट के लिए उपस्थित हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, उसकी ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूं और डायस के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से अनुरोध करती हूं कृपया अपना अपना स्थान शीघ्र ग्रहण करें। डॉक्टर बी के प्रताप मिडा, मिस अमना शरीफ, भ्राता राजयोगी ब्रिजमोहन भाई, राजयोगिनी बी के सुषमा बहन, बहन अस्मिता सिंह, भ्राता कुलदीप सिंह, भ्राता रजनीकांत सिंह, भ्राता गोपाल भाई सुतरिया, भ्राता जीएसपी वीरा रेड्डी, भ्राता ध्यान सिंह रावत, राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल, बहन शर्मिला ओसवाल, भ्राता मेहर चंद जी, सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व हम सभी 3 मिनट उस डिवाइन सुप्रीम पावर की स्मृति में बैठते हैं।
सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों, अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। योग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। बंधुत्व भाव के गौरव को वालो जानो, सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।
Om Shanti, Honorable Mrs. Justice Vijayalakshmi, से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके साथ ही मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ मंच पर आसीन हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट्स का बुकेज और बैजेस के साथ अभिनंदन करें। Om Shanti. God's wisdom for socio-economic transformation. Parivartan sansar ka niyam hai. Aur call of the time, ye parivartan ki vela hai. चारों तरफ अगर विश्व में दृष्टिपात करें तो हर एक के अंदर से यही आवाज निकलता है, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। किंतु परिवर्तन की घड़ियां जटिल होती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम सब अंदर से महसूस करते हैं कि परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज का बड़ा सुंदर विषय ग्लोबल विजडम, ईश्वरीय दिव्य बुद्धि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार कराती है, सामाजिक और समाज को अगर हम देखते हैं, पहले का समाज सेल्फलेस वननेस थी, खुशनुमा था, जीवन में वैल्यूज थी, डिसिप्लिन था, लव एंड लॉ मर्यादाएं थी और एक दूसरे के ऊपर विश्वास, स्नेह, सहयोग, परिवार, समाज और देश में हार्मनी थी। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो देश और दुनिया की सुबह से लेकर के रात तक की सारी कार्यप्रणाली अर्थ अर्थात मनी के इर्द गिर्द घूमती है। और इस अर्थव्यवस्था की भी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, अगर हम अपनी अर्वाचीन अर्थव्यवस्था को देखें तो उस समय बार्टर सिस्टम था। आपने एक वस्तु दी और दूसरे से जो वस्तु आपको चाहिए वो आपने उससे ले ली, और उसके बाद बार्टर से लेकर के आज क्रिप्टो तक मानवीय सभ्यता में भिन्न भिन्न रूपों के साथ आज मानव जीवन उसके अंदर आता गया और हम साक्षी होकर के देखते गए। और परिवर्तन कमोडिटी मनी, करेंसी, पेपर नोट्स, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन ट्रांसफर, बहुत सारे साधन आज हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी उसकी स्टेबिलिटी और सामाजिक जीवन का समन्वय और सामंजस्य जो चाहिए वो नहीं होता। ऐसे समय पर विश्व में इको सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस ऑलमाइटी का इंकार्नेशन होता है, और वो दिव्य बुद्धि दाता दिव्य बुद्धि देकर के वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कैसा होगा। आप सभी कल सुबह से देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। इस पर हमारे आज के मंच पर आसीन विशिष्ट वक्ताएं अपने अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रही हूं डॉक्टर राजयोगी प्रताप मीणा से। आप मेडिकल डायरेक्टर एंड ट्रस्टी हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के। अनुरोध करती हूँ हमारे सभी भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव का सम्मान अभिवादन करें डॉक्टर प्रताप भाई मीणा।
ओम शांति। इस भव्य सभागार में आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप हमारे आदरणीय मेहमान हैं और मैं ये समझता हूँ कि आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं। आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में उत्तराखंड के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर पधारे हैं, जो आज के हमारे मुख्य मेहमान हैं श्री धन सिंह रावत जी। आप दूर से पधारे हैं और समय निकाल कर पधारे हैं। आपका जीवन लोक सेवा में है और हम समझते हैं कि आपके यहाँ आने से जो चिंतन आज यहाँ चल रहा है कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसमें हमें ज़रूर नए विचार सुनने को मिलेंगे। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ब्रह्मा कुमारीज के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जीवन ज्ञान योग धारणा और दिव्य गुणों से सुसज्जित है। वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार, उनका चिंतन हमेशा नया होता है। वो सोचते हैं कि कैसे सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम इस बात को बहुत गहराई से अनुभूति करते हैं, रियलाइज करते हैं कि जब तक जीवन में दिव्य गुणों का विकास नहीं होगा, जब तक आध्यात्मिकता हमारी फाउंडेशन नहीं बनेगी, तब तक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। हमारे बीच में श्री जीएसपी वीरा रेड्डी जी भी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं। अभी बात कर रहे थे कि उनका कार्य कितना विस्तार है, पूरे राजस्थान क्या लगभग 11 प्रांतों में उनका कार्य चल रहा है और कार्य भी बहुत पुण्य का है, पानी पिलाने का, सबको शुद्ध पानी मिले, ये उनका कर्तव्य है। तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में यूं कहें कला के जगत से बहन आमना शरीफ हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कला हमें प्रेरणा देती है, कला हमें जागृति देती है, कला हमें आगे बढ़ने का उत्साह भी देती है। हमारे साथ पत्रकारिता की फील्ड से भी श्रीमती अस्मिता सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, रजनीकांत सिंह जी, आप सभी पधारे हैं। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप पधारे हैं और मैं समझता हूँ आपका तो जीवन ही लोगों को चेतना देने के लिए है, लोगों तक वो बात पहुँचाने की है जिससे उनके जीवन का भी भला हो और देश का भी भला हो। हमारे बीच में आदरणीय सुषमा बहन है। सुषमा बहन राजस्थान में जो हमारे सेवा केंद्र है उनकी संभाल करती हैं, बहुत अनुभवी हैं, राजयोगी हैं और उनके चिंतन में हमेशा यही रहता है कि कैसे हम आध्यात्मिकता की गहराई में जाएं। जब तक हम गहराई में नहीं जाते तो जो सूक्ष्म परिवर्तन की आशा हम अपने आप से रखते हैं, संस्कार परिवर्तन की आशा रखते हैं, वो संभव नहीं होता। तो मैं सुषमा बहन का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में मोहन भाई जी हैं, जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग्स के चेयरपर्सन हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ नवीनता से सोचते रहते हैं और नए नए कार्यक्रमों का सूत्रधार करते हैं। हमारे बीच में श्री गोपाल भाई जी भी हैं, जो यूं कहें हमारे लिए एक नई क्रांति ला रहे हैं कि नेचुरल तरीके से, बिना किसी यूं कहें आर्टिफिशियल तरीकों से, कैसे लोगों तक स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है वो पहुंचाया जाए। तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज के मंच सचिव शारदा बहन जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो इस सभा में पधारे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आनंद से, बहुत बहुत प्रेम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप भगवान के घर में पधारे हैं और मुझे लगता है कि आप अपने हर पल को सफल कर रहे होंगे, क्योंकि यही समय है जब हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन का एक नव निर्माण कर सकते हैं और हमारे जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी। तो इस मंच पर मेहरचंद भाई जी भी हैं जो उत्तराखंड में काफी एक्टिव रूप से सेवा में रहते हैं और ओरिजिनली तो हरियाणा से है, मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। मैं ये समझता हूँ हमारे बीच में जस्टिस विजय लक्ष्मी जी पधारे हैं, शायद नहीं, उनका भी हार्दिक स्वागत कि हम ये समझते हैं कि हम सब मिलकर डाइवर्स फील्ड से हैं, लेकिन कहते हैं ना सबके सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार का निर्माण हो सकता है। जीवन के विभिन्न पहलू हैं, जीवन के विभिन्न आयाम हैं और हम सबको मिलकर अगर भारत को महान बनाना है, हम अगर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले तो हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपने जीवन के स्तर को, अपनी आध्यात्मिकता के स्तर को, अपने जीवन के वैल्यूज को, मूल्यों को बढ़ाना होगा और अपने जीवन को गहराई से सोचना होगा, तभी हम दुनिया के लिए भी उदाहरण बन सकते हैं और अपने लिए भी एक सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से और बहुत आनंद से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी हमारे बीच में पधारे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत के लिए, डॉक्टर प्रताप मीणा का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे समक्ष शुभकामनाएं देने के लिए आ रही हैं बहन अमना शरीफ, टीवी एवं फिल्म एक्ट्रेस, मुंबई। ओम शांति। ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के मन को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रह्म कुमारी एंड ओम शांति। थैंक यू। इसके साथ ही राजयोगी भ्राता मृत्युंजय भाई से अनुरोध करती हूँ, अपना बहन को अभी ही यहाँ से प्रस्थान करना है तो उन्हों का सम्मान कीजिए। आदरणीय मृत्युंजय भाई, और इसके साथ ही अनुरोध कर रही हूँ हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन भाई, आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारी है और इसके साथ ही साथ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के 20 डिफरेंट प्रोफेशनल विंग्स हैं, उसमें पॉलिटिकल सर्विस के आप चेयरपर्सन हैं। पिछले 65 वर्षों से आप इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हुए पांचों महाद्वीपों में आपने भ्रमण करते हुए अनेका अनेक आत्माओं के जीवन को परिवर्तित किया है। अनुरोध करती हूँ आज का जो बहुत सुंदर विषय गॉड्स विजडम फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर अपनी की नोट स्पीच करते हुए अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें, आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई।
ओम शांति। एक बार जरा थोड़ा बोल दीजिए, ओम शांति। आज के इस विशाल डायमंड हॉल में पधारे हुए सारे भारत से और अन्य देशों से बहनों और भाइयों, और हमारे मंच को सुशोभित करने वाले आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरी दाईं ओर बैठे हैं, माननीय धन सिंह रावत जी, आप उत्तराखंड के मंत्री हैं। बहन सुषमा जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, और समय बचाने के लिए सबके नाम नहीं लेता हूं, सभी माननीय बहन भाई और हमारे माननीय अतिथिगण, आज का विषय बहुत ही ज्यादा एक ऊंचे स्तर का है कि परमात्मा की श्रीमत किस लिए के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए। तो मैं इसको एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं, और वो कहानी ये है, एक बार नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से एक प्रपोजल रखा कि हे भगवान, आप तो न्यायकारी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, तो मैं धरती से आया हूं, एक आपके लिए छोटा सा, मैं छोटा मुंह बड़ी बात सजेशन लाया हूं, प्रपोजल लाया हूं। आप देख रहे हैं कि कलयुग के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, कितना शहरों में रश बढ़ गया है, कितनी हवा पॉल्यूटेड हो गई है, लोग बड़े दुखी हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के अकाल, सारे दुख वर्णन कर दिए, अकाल मृत्यु हो रही है, और स्वर्ग में सतयुग में मैंने सुना है इतना अथाह धन सब कुछ इन अबंडेंस होता है, वहां तो सारी चीजों का प्रयोग ही नहीं देवता लोग कर सकते। तो मेरा ये निवेदन है कि आप कुछ लोगों को कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आइडिया तो बड़ा अच्छा है, एक तरफ भूख मरी, एक तरफ सारी किल्लत, और एक तरफ बहुतात, तो क्यों ना कर दिया जाए। तो आप जानते हैं भगवान क्या करते हैं, भगवान मुस्कुराए। अब उसकी मुस्कुराहट के कई मतलब होते हैं, जो व्यक्ति जैसा मतलब निकाल ले। फिर भगवान बोले, अच्छा नारद, मैं तुझे ही अनुमति देता हूं कि कलयुग के जितने लोग सतयुग में जाना चाहें उनको ले आओ। वो तो बहुत खुश हो गया कि सारी विश्व का कल्याण हो गया, तो धरती पर आके वो प्रकट हो गए, और कहां प्रकट हुए, एक बिजनेसमैन अपने बेसमेंट में पैसे गिन रहा था, उस समय डिजिटल करेंसी नहीं आई थी, पैसे गिन रहा था, अचानक नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण तेरे लिए बहुत खुशखबरी है, स्वर्ग में एक सीट खाली है। पहले तो उसने सिर से पांव तक उनको देखा, फिर बोला आप अंदर कैसे आए, और सोचा कि मैं तो ब्लैक मनी गिन रहा हूं, बोला कि अब यहां से रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूं। अब नारद जी ने कहा इसकी समझ में नहीं आ रहा, वो गायब हो गए। फिर वो गए, एक साधु जी का बहुत बड़ा आश्रम था, बड़ा बड़ा विशाल, नीट एंड क्लीन, वो उसके बाहर खड़े थे, उनको भी जाके वही ऑफर किया। तो साधु जी बोले, देखो अभी मैंने नया नया आश्रम बनाया है, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, मैं तो अभी नहीं जा सकता। ऐसे वो कई लोगों के पास गए और सब ने इनकार कर दिया। अब नारद जी को भगवान की मुस्कुराहट याद आई, और उसने कहा बड़ी मुझे तो शर्म आएगी, एक आध तो ले जाऊं। फिर उन्होंने और घूमा तो एक बुढ़िया माता थी, वो कह रही थी, कुबड़ी थी, झुक के चल रही थी, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। उसने सोचा ये ग्राहक अच्छा है, ये तो चलेगी, उसके पास गया, तो उसने भी वही कहा कि भाई मैं नहीं जा सकती, अभी तो मुझे अपने पोते की शादी देखनी है, अभी मैं नहीं जा सकती। उसने कहा माता चल, तू तो कह रही थी भगवान मुझे उठा ले। वो बोले मैं तो नकली कह रही थी। उसने दूसरी तीसरी बार कहा तो माता ने गुस्से से कहा मेरे पीछे क्यों पड़ा, और कोई नहीं मिला। अब नारद जी समझ गए। अब आप देखिए कि हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, विश्व परिवर्तन की, और उसके लिए परमात्मा को ही याद करते हैं। अब परमात्मा सबकी सुनते हैं तो जरूर उन्होंने हमारी भी सुनी होगी। पहले तो परमात्मा हमसे पूछते हैं कि मैंने तो ट्रांसफॉर्मेशन किया था। मनुष्य प्राणी सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। माना जाता है कि परमात्मा ने उसको अपनी छवि में रचा, और आज भी हर वक्त दुनिया की जो दशा होती है वो मनुष्य के अनुसार ही बदलती है। सूर्य तो अपने समय पर निकलता है, पशु भी अपने ढंग से बिहेव करते हैं। अगर कोई वेरिएबल फैक्टर है तो मनुष्य है। मानव ऊंचा हो जाए तो दुनिया ऊंची हो जाती है, मानव नीचा हो जाए तो दुनिया नीची हो जाती है। अब देखिए, अगर आप गौर करें, इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी जिसको भगवान ने अपनी छवि में रचा, वो प्राणी की आज क्या दशा है? अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ भाई दुनिया में सबसे सस्ती चीज कौन सी है, सबसे सस्ती, तो आपने गीत सुना होगा कि मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। आज इंसान इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया कि उससे सस्ती कोई चीज ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? सारे वर्ल्ड में एक डिपार्टमेंट है, सब देशों में है, यूनाइटेड नेशन में खास तौर पर है कि इंसानों की आबादी को कंट्रोल किया जाए। हैरानी की बात है, जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इतना बहुमूल्य है, उसकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए इंसान ही कह रहे हैं। कारण तो होगा कुछ। तो कारण ये है कि दो चीजें हैं, एक है इंसान और एक है इंसानियत। अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो उसका मूल्य है, और अगर उससे इंसानियत निकाल दी जाए तो जैसे सेपरेटा दूध सस्ता होता है उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? हम विश्व ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, व्यक्तिगत से शुरू करें। अगर इंसान के अंदर इंसानियत दोबारा डाल दी जाए तो चाहे सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी प्रकार का भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि अब तुम आए हो, मैंने तो तुम्हारे में वो डाली थी और बहुत समय तक तुम्हारे अंदर वो रही, तुमने ही इंसानियत को अपने से अलग कर दिया। अब व्यक्ति सोचता है कि मैंने कैसे अलग कर दिया? इस प्रकार से कर दिया कि इंसानियत होती है आत्मा में और बाकी तो इंसान है, वो जीव है, वो तो जैसे बाकी जीव है उसी प्रकार से है। तो एक ऐसा काल आया, भगवान ने तो, परमात्मा ने तो हमारे को गॉडली विजडम दिया था, एक ऐसा काल आया जब हमने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया और अपने को शरीर मानने लग गए। अब कोई व्यक्ति, जैसे शरीर मेरा मकान है और मैं मकान का मालिक हूँ, अगर मालिक मकान ये समझे कि मैं मकान हूँ तो क्या होगा? तो इसी कारण से मकान के अंदर अगर मालिक ना हो, 80 साल कोई मकान खाली रहे, उसको तो भूत बंगला कहते हैं। अब क्या होगा? ये हालत है। इसी कारण से भगवान ने बिल्कुल शॉर्टली ब्रीफली ये बताया है कि इस झूठ के कारण से, इस गलत फहमी के कारण से, अपने आप को शरीर मानने के कारण से तुम सचमुच, तुम्हारे अंदर 5 भूत घुस गए हैं। और वो 5 भूत कौन से हैं? आप सड़क पर जाइए, आपको हर जगह उनका विज्ञापन मिलेगा। और वार्निंग दी जाएगी कि इन भूतों से बचो। आपने देखा सड़कों पर ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सबने देखा है? अच्छा, जब रेड लाइट आती है तो लोग अच्छी तरह पढ़ते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। जब भारत भगवान ने दुनिया को गॉडली विजडम दी थी तो बुरी नजर नहीं थी, सबकी नीयत साफ थी, सबकी सिविल आईज थी, अर्थात उनकी आंख शुद्ध थी, वो देवी देवता थे। सुबह भी कोई कह रहे थे कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं। अब इसको उल्टा कर लीजिए, जहां नारी का आजकल जो हाल होता है वहां कौन बसते हैं? अच्छा, आगे चलिए। कई जगह आपने पढ़ा होगा, खास तौर पे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ये कितनी खराब बात है भाई, जगह जगह बेटी को बचाने की नौबत आ गई और लोग जानते हैं कि घर में बेटी पैदा होगी, मैंने मुसीबत आ गई। कई लोग तो उस बेचारी का जन्म से पहले ही खत्म कर देते हैं। एक ये है। इसी प्रकार से कई प्रकार के विज्ञापन दिखे जाएंगे। हम जानते हैं किसी एरिया के अंदर कोई ग्राउंड्स होता है, छोटा मोटा बगीचा होता है, पार्क होता है, वहाँ लोग रात को खूब लाउड स्पीकर बजाते हैं, चाहे बच्चे इम्तिहान देने के लिए हो तो अच्छी तरह 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। तो सरकार क्या करती है, लिख देती है यहाँ लाउड स्पीकर बजाना मना है, बस छुट्टी हो गई, हो गया काम हो गया। यहाँ लाउड स्पीकर बजता रहेगा पर बजाना मना है। इसी प्रकार से जैसे होता है यहाँ यूरिनेशन करना मना है, वहीं लोग जाके यूरिनेशन कर रहे होते हैं। सिगरेट पीना कानूनी अपराध है, हम लिख देते हैं। और जिन जिन चीजों का हम नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स हम उन्हीं पर लगाते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारी सरकारें चलती हैं। आज भी भारत के अंदर 2 सरकारें शराब के रेवेन्यू के कारण से दिक्कत में हैं। अब कौन बनाता है, एक तरफ हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, यहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं नशा मुक्ति अभियान, ये नशा मुक्ति के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट खोला हुआ है, लेकिन नशे की चीजें पैदा कौन करता है। इसलिए ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, अब किसी चीज को हाथ लगा के देख लो। आज बहुत बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल बन रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसका फायदा किसको मिलता है, अमीर आदमी को। आज आपने चांद पर चंद्रयान भेज दिया कि वहां से कुछ नई तरह के धातुएं मिलेंगी जो अमूल्य होंगी, देश को बहुत फायदा होगा, विश्व को बहुत फायदा होगा, उसका लाभ किसको मिलेगा, अमीर आदमी को। आज जितनी भी बड़ी इम्प्रूवमेंट और इन्वेंशन हम कर रहे हैं उसका लाभ किसको मिलता है, गरीब अमीर आदमी को। भारत में ऐसे प्रांत हैं जहां नारी के पास केवल एक धोती होती है, उससे वो गुजारा करती है। तो इतनी विषमता हमारे देश के अंदर है, तो सोचना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा डिटेल में ना जाकर परमात्मा जो गॉडली विजडम या जिस फार्मूले से भगवान ने व्यक्ति का और विश्व का परिवर्तन किया था, वो मैं आपको 2 शब्दों में बता देता हूँ जो हमने सीखा है ब्रह्मा कुमारी में। वो ये है, 2 शब्द हैं, सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। एक है सत्य और दूसरा अहिंसा, आपने सुना होगा सत्य और अहिंसा। अच्छा, सत्य क्या है, तो आप देखिए कि सत्य का गीता में फर्स्ट पेज पे मेंशन है कि तुम आत्मा हो, आत्मा सत्य है, आत्मा अनादि है, आत्मा विनाशी है। इसकी ज्यादा डिटेल में वर्णन नहीं करता, लेकिन आत्मा सत्य है। अच्छा, शरीर नश्वर है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं शरीर के साथ एक जन्म में आपको सुख देती हैं। आत्मा के अंदर जो रहेगा, जो अपने आप को आत्मा मान के चलेगा, वो मालिक मकान मान के चलेगा, अपने आप को मकान नहीं समझेगा। तो जब तक परमात्मा ने ये जो शिक्षा दी थी कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा चैतन्य है और ओरिजिनल रूप में आत्मा सतोगुणी है, गुणवान है। तब तक भारत देवलोक था, तब तक अमर लोक था, आज हम भारत को मृत्यु लोक कहते हैं, क्या फर्क पड़ गया। यही दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, जरा सा भी गलत मोड़ काट ले तो जितना भी वो आगे जाएगा, जितना भी आगे जाएगा फासला बढ़ता जाएगा, उसकी मंजिल से दूरी होती जाएगी। ये भी कहा गया है कि जो नकली चीज होती है वो खूबसूरत होती है। यहाँ तक कहा गया कि जो चुड़ैल होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, सूप नखा की तरह होती है। अगर चुड़ैल को पहचानना हो तो उसके पांव देखने पड़ते हैं, उसके पांव उल्टे होते हैं, वो जाएगी भागेगी तो पीछे को भागेगी। इसी प्रकार से जिसको हम झूठ कहते हैं, झूठ इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना जल्दी से व्यक्ति को खींचने वाला होता है, लेकिन व्यक्ति झूठ में फंस कर चले जाता है। तो पहला झूठ हमने बोल लिया कि मैं शरीर हूँ, अब उससे तो गड़बड़ होती जाएगी। तो उस झूठ के कारण, जो सत्य के कारण अहिंसा थी, अहिंसा का मतलब यह है कि जो आप हर प्रकार से समझेंगे किसी प्रकार की हिंसा नहीं। आज लोग केवल शरीर को दुखी करना, मन को दुखी करने को हिंसा मानते हैं, लेकिन भगवान क्या बताते हैं, आप गीता को आगे खोल लीजिए। पहले भगवान ने कहा कि तुम आत्मा हो, फिर क्या कहा, जिसका मैंने वर्णन किया कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, ये गीता में लिखा हुआ है। और ये बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ये काम विकार की ही परिभाषा है। इसलिए भगवान कहते हैं, जो ही आपने शरीर माना, काम विकार ने आपको घेर लिया। सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य ने गलती की थी, एडम और ईव ने, जिस कारण से उन्हें स्वर्ग से धक्का दे दिया गया था। वो एग्जाम्पल है एडम और ईव का, हम सब ने यही किया। उस कारण से जिसको हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि सोशल रिफॉर्म हो, आज हम मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देके अपना सीना तान रहे हैं। अरे भाई, तुम देने वाले कौन होते हो, है? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन दो? जरा देवी देवताओं को देखो, जितने हमारे देवी देवता हुए हैं उसमें नारी का बराबर का दर्जा था, बल्कि नारी का नाम पहले लिया जाता था। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण दोनों राजगद्दी पर बैठे हैं, श्री सीता, श्री राम दोनों राजगद्दी पर बैठे हैं। हर देवी देवता में देवी का नाम पहले होगा, राधे कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, और हम उनको 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया उनको रिजर्वेशन देने का? उनको कोई अधिकार नहीं था। धीरे धीरे राजगद्दी से नारी गायब हो गई, सिर्फ महाराजन रह गए। और चलते चलते आप देखिए कि अब हमने क्या किया, नाम माता का लेते हैं, लेकिन उस माता के नाम मात्र इज्जत करते हैं। हम कहते हैं भारत माता, बड़े शौक से कहते हैं भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वो भारत माता देश की मिट्टी के लिए कहा गया या भारत माताओं के लिए कहा गया? फिर हम कहते हैं गौ माता, अच्छा, फिर हम कहते हैं गंगा माता, गीता माता, सब कहते हैं, लेकिन हमने मातृ को किया क्या है? सारी गीता पढ़ लीजिए, सारी गीता में मातृ शक्ति का नाम ही नहीं है, है तो उल्टे रूप से है। फर्स्ट चैप्टर में क्या कहा गया कि दोनों सेनाओं के अंदर दादे, मामे, चाचे, गुरु, गुसाई, भाई, सारे सब थे। दादियां, मामियां, चाचियां कहाँ गई, बताइए? और गीता के अंदर ये कह दिया गया कि आप जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं वर्णन करता, कि नारी और शूद्र दोनों ही तर सकते हैं, नारी का यह अधिकार दे दिया। वैसे हम भारत माता कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे आकर के इसको, इस इम्बैलेंस को चेंज करना पड़ता है। सार कहने का ये है कि यो जो हम चीजें मांग रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी अगर हम बेसिक तौर पे ये समझेंगे कि सत्य पे चलना है। सत्य आत्मा है, पुरुष में भी आत्मा है, स्त्री में भी आत्मा है, विष्णु का रूप उसका सिंबल है, और अगर सत्य पर नहीं चलेंगे तो काम क्रोध लोभ अहंकार ये आ जाएंगे, और ये पांचों हिंसा हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये पांचों ही हिंसा है। किसी कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछो सारे मुकदमे बताओ, वो यही बताएगा कोई काम से मुकदमे चल रहे हैं, कोई क्रोध से चल रहे हैं, कोई लोभ से चल रहे हैं, वो और अहंकार से चल रहे हैं। ये हमारे दुश्मन हैं। और गीता के भगवान यानी परमात्मा ने हमें जो गॉडली विजडम दिया, श्रीमत दिया, वो यही था रिवर्ट। अगर आपने अहिंसा को फॉलो करना है तो पहले पहले अपने आप को सत्य आत्मा मानो, फिर मुझ परमात्मा से, क्योंकि तुम्हारी शक्ति घट गई है, तुम्हारे अंदर विकार घुस गए हैं, याद करो जिसको योग कहते हैं, मनमना भाव हो जाओ और उस याद की शक्ति से तुम्हारे विकार निकल जाएंगे और पुनः हर एक चीज ऑटोमेटिकली, हर प्रकार का न्याय ऑटोमेटिक हो जाएगा। देवताओं के लोक में देवी देवता महाराजा महारानी थे, वहाँ कोई न्यायपालिका नहीं थी, वहाँ कोई मंत्री नहीं थे, वहाँ किसी प्रकार का, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण थे। राजा संपूर्ण होता है, बड़ा छोटे को राय देता है या छोटे से राय लेता है, ये सारी बातें हैं, समय नहीं है। कहने का भाव ये है, परमात्मा अब पुनः उसने देखा, गीता में कहा हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा मैंने जो कुछ किया है वो सब खत्म हो जाएगा, मेरा सिखाया हुआ योग लुप्त प्राय हो जाएगा और मैं फिर आऊंगा। क्यों? कि पुनः आकर मैं गॉडली विजडम दूंगा। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है इसको कोई साधारण संस्था नहीं समझिए, ये उसी गॉडली विजडम को प्रैक्टिकल में लाके, हर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अपने आप को आत्मा समझता है, दूसरे को भी आत्मा समझता है, परमात्मा को याद करता है, और उस कारण से काम क्रोध लोभ अहंकार से मुक्त होता है। बोर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटी बचाओ या जेंडर इक्वालिटी करो या इतना रिजर्वेशन दो, ये कुदरत ने ऑलरेडी दिया हुआ है। माँ के बगैर ना बाप बन सकता है, ना भाई बन सकता है, ना बच्चा बन सकता है, माँ के बगैर तो परिवार हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं पुनः मातृ शक्ति का सम्मान करना सीखेंगे तो भारत पुनः स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब ने अपने विचार सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिए, इसीलिए कहा विजडम ओपन द हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट। अब हमारे बीच आदरणीय भ्राता गोपाल भाई सुतरिया जी विराजमान है। बहनों से अनुरोध करती हूँ आपका अभिवादन करें। आप फाउंडर बंसी गिर गौशाला गुजरात से पधारे हैं। Honorable Justice Mrs. Vijaya Lakshmi, अगर यहाँ हाजिर हैं तो अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। Honorable Justice Mrs. Vijaya Lakshmi, काफी समय से हम सुन रहे हैं। प्रातः है हम सभी ने राजयोग मेडिटेशन का प्रथम सत्र आत्मा की रियलाइजेशन, जिस पर अभी आदरणीय भ्राता जी ने भी प्रकाश डाला, उन वैल्यूज को पुनः स्वयं में धारण करेंगे तो परिवर्तन होगा। राजयोगिनी सुषमा बहन जी जो पिछले 53 ईयर्स से स्वयं भी पूरे डेडिकेशन के साथ राजयोग का अभ्यास कर रही है और इस अभ्यास से अनेकों के जीवन का परिवर्तन किया है, ऐसी अनुभवी त्यागी त तपस्वी बहन सुषमा जी से अनुरोध करती हूँ, हम सभी को कुछ क्षणों के लिए इन आवाजों की दुनिया से परे ले जाते हुए उस गॉडली विजडम का अनुभव करें। सुषमा बहन जी, ओम शांति। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर, सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक सतगुरु, शिव पिता परमात्मा की प्रिय संताने, आज की सभा में उपस्थित हमारे सर्व भाई एवं बहने और हमारा अनुभवी प्रेरणादायी विद्वता से पूर्ण सम्मानित मंच, आज का विषय जितना गहन है इसको समझने के लिए तो बहुत समय चाहिए, फिर भी गॉड्स विजडम क्या है, परमात्मा की जो दिव्य शक्ति हम आत्माओं को दी है वो क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे शास्त्रों में है, मनुष्य के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीजों की प्राप्ति होनी चाहिए, संपन्नता होनी चाहिए। हम जिस युग में जी रहे हैं ये अर्थ प्रधान युग है, किसी से भी पूछा जाए बच्चा बूढ़ा जवान केवल पैसा कमाने के लिए मारा मारी चल रही है, पढ़ाई भी हमारी कंपटीशन भी क्यों है, सब चीज जहां देखो डम्मी, मुझे इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है, स्कूल में एजुकेशन ना लेके कोचिंग सेंटर्स में, और फिर उनकी हालत देखिए बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, इतना प्रेशर है लोगों पर बच्चों पर यूथ पर जो वो झेल नहीं पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, काफी कुछ हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी ने कहा है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। हम एक बहुत ऊंचे देश के रहने वाले हैं जहां साल भर में हम हर त्योहार एक ही दिन मनाते हैं, राखी हो दिवाली हो दशहरा हो होली हो, केवल एक नवरात्रों का त्योहार है जो प्रत्यक्ष रूप में तो साल में दो बार मनाया जाता है, चैत्र मास और अभी बड़े नवरात्रे आएंगे कार्तिक मास में, दो नवरात्रे नौ नौ दिन के गुप्त मनाए जाते हैं। तो अवश्य ही भारत में कभी माताओं बहनों ने ऐसा कार्य किया है, इतिहास इस बात का साक्षी है। हम याद किसको करते हैं जो इस संसार में होकर गए हैं, चाहे हमने इन आंखों से ना देखा हो। तो देवियों का इतना जो पूजन होता है वो इसीलिए है कि कलयुग के अंत में जब सृष्टि का परिवर्तन होता है तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आकर ज्ञान का कलश माताओं बहनों को परिवर्तन के लिए देते हैं। जो कार्य आप चाहे पहली बार आए हों या दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देख रहे होंगे, आप देखिए क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चमत्कार नहीं है। आप कितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप सबको संभालने के लिए सुरक्षा के लिए क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस खड़ी है? अगर हमारी उस दुनिया में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है कितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, जनता कम सिक्योरिटी की चिंता अधिक। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी कौन सी है कैसे है, वो सिक्योरिटी है मूल स्वभाव की, जो मेरा फर्स्ट स्वभाव है
आप देखिए, अगर आप जाने अनजाने में भी किसी की इंसल्ट कर दें, गाली निकाल दें, चमाट लगा दें, आपके मन में फिर क्या आता है? फिर कहते हैं, अरे मैं ऐसा ना बोलता ना तो ज्यादा अच्छा था, मैं उस समय शांत रह जाता। तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड स्वभाव है। फर्स्ट स्वभाव क्या है? जो हम चाहते हैं, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो आध्यात्मिकता ये है जो हमें याद दिलाती है कि आप कौन हैं। तो एक छोटी सी कहानी कि एक बार ताले और चाबी में आपस में जिरह हो गई और ताले ने चाबी से पूछा, हथौड़े ने चाबी से पूछा कि हे बहन, तू तो पतली दुबली सी छोटी सी है, तू फिर भी ताला खोल देती है, और मैं हथौड़ा तेरी ही जाति का इतना हेल्दी हूँ, पर अगर ताला खोलना हो तो हथौड़े पर हथौड़ा, हथौड़े पर हथौड़ा ताला टूट जाता है लेकिन ताला खुलता नहीं है। चाबी ने कहा, भैया आप बड़े तो जरूर हो, लेकिन मैं एक ही काम करती हूँ कि मैं धीरे से ताले के अंदर जाती हूँ और उसको घुमा देती हूँ, ताला खुल जाता है। आध्यात्मिकता ये है, अब हमें धीरे से अपने अंदर जाना है। जो ब्रह्मा कुमारी में सर्वशक्तिवान ने लक्ष्य दिया है, नर नारायण नारी लक्ष्मी बने विष्णु चतुर्भुज, जिसके हाथ में चार अलंकार हैं, स्वदर्शन, शंख, गदा और पद्म। स्वयं को देखें, स्वदर्शन, शंख माना मधुर ध्वनि, गदा माना श्रेष्ठ कर्म, कमल पुष्प माना हम न्यारे प्यारे रहे। तो मैं आपको ले चलती हूं उस अंतर जगत की ओर, जिससे हम सीख जाएं कि स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं, क्योंकि परदर्शन तो हम खूब कर लेते हैं, इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये बोला, उसने ये बोला। मेरा तो बल्कि ये अनुरोध है कि ये अगला मास अक्टूबर जो आ रहा है, 15 दिन श्राद्ध और 15 दिन नवरात्रे आदि रहेंगे, अगर हम सब अपने अंदर एक प्रतिज्ञा कर लें, एक मास हमें मौन में ही रहना है और स्वयं को देखना है। मौन माना आप कहेंगे मुश्किल है, हम तो घर गृहस्थी में है। बोलो, धीरे बोलो, कुछ पूछना है कहना है धीरे से कहो। चाय मेरे टेस्ट की नहीं बनी, भोजन तैयार नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, धैर्यता रखो। उसके लिए विचारधारा को बदलना है, अर्थात ये समझना है मैं कौन हूं। तो चलिए अपने अंतर जगत की ओर। आप जहां जहां भी बैठे हैं, कुछ क्षणों के लिए थोड़ा सा सीधा होकर बैठे, अलर्ट होकर बैठे, और चलो चलें अपने अंतर जगत की ओर। स्वयं से स्वयं पूछे, मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, कर्म करने वाली, संबंध जिम्मेवारी निभाने वाली, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान शुद्ध हूं, पवित्र हूं। ये शुद्धता, पवित्रता, शांति मुझ आत्मा का श्रृंगार है। हर कर्म शांति पवित्रता की शक्ति से परिपूर्ण हो, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य से देव बनने वाली मैं आत्मा हूं। हद की बातें हद की सीमाओं से पार चले। देह तो केवल एक वस्त्र है, इंस्ट्रूमेंट है। भ्रिकुटी के बीचों बीच मैं चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश, दया, कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न हूं, प्रभु प्रेम से भरपूर हूं। मुझ आत्मा के चारों ओर शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रभु प्रेम का ऑरा बन चुका है। मैं आत्मा एकदम निश्चिंत निर्भय हूं, क्योंकि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है। नेत्र खुले रखें। महसूस कीजिए, प्रभु प्रेम मुझ आत्मा पर बरस रहा है। शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं। मैं आत्मा निश्चिंत निर्भय हूं। यही श्रेष्ठ जीवन है, सुख शांति से भरपूर है। तह दिल से पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। हे सर्वशक्तिवान शिव पिता, आपने मुझे अपना बनाया है। इतना सुंदर वातावरण ज्ञान दिया है। शिव पिता, तह दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। स्वयं को इन शक्तियों से संपन्न करते हुए, प्रभु प्रेम से भरपूर होकर, पुनः मैं आत्मा कार्य करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही हूं। रिलैक्स। इस तरह से अगर हम अपने जीवन में जीवन को योगी जीवन बना ले, योग सीखना नहीं, जीवन निरंतरता का नाम है, कॉन्टिन्यूटी का नाम है, भोजन रोज खाना है, श्वास हर घड़ी लेना है, मन में श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ भाव सर्व के लिए सदा रखना है, आत्म भाव में रहने का अभ्यास करके, अप्लाई करके अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें। आप सबका जीवन खुशियों से, सुख शांति से भरपूर हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। अंतर मन की ये महसूसता। हमें बहुत कुछ महसूस कराती है। अब हमारे समक्ष मिर्जापुर यूपी से विद्या डांस ग्रुप की कुमारियां एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। हम सब तालियां बजाकर उस विद्या ग्रुप का अभिवादन करते हैं।
खुद की खोज में निकलना तो किस लिए आदर्श है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र, तू बना ले इनको शस्त्र, तू तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
बहुत सुंदर हमारे बीच विशेष गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन भ्राता धन सिंह जी रावत पधारे हैं। अनुरोध करती हूँ आज के इस सुंदर विषय पर, गॉड्स विजडम फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर अपने सुंदर विचार हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय भ्राता धन सिंह जी रावत।
ओम शांति। आप लोग बहुत आराम से बोले, ओम शांति। सम्मानित हमारे डॉक्टर प्रताप भाई जी, राजयोगी ब्रिजमोहन भाई जी, राजयोगिनी दीदी हमारी सुषमा बहन जी, जिनको अभी हमने सुना, हमारे बीच में डॉक्टर प्रताप जी आ रखे हैं, माननीय गोपाल भाई जी आ रखे हैं, मंच पे हमारे बहुत विद्वत जन लोग हैं, और आज जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, हमारे मेहर चंद जी जो कि पूरे उत्तराखंड का काम भी देखते हैं, और बहन ऊषा जी हैं और बहन नीलम जी हैं। मैं भी पहली बार जो है आज यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं सच बोलूँ तो मैं इस धारणे से आया था कि मैं वहाँ जाके कुछ सुनूँ, लेकिन यहाँ के जब मुझे लगा कि मैं सुबह आया यहाँ और मैं तीन सत्रों में यहाँ पे बैठा, और तीनों सत्रों में मैंने देखा कि एक से एक विद्वान लोग यहाँ आज पधारे हैं हमारे यहाँ। आज जो वैश्विक शिखर सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, उसका टॉपिक भी बहुत सुंदर आप लोगों ने रखा है कि नए युग के लिए दिव्य ज्ञान। और जब ज्ञान की बात होती है और उसमें भी दिव्यता की बात होती है, क्योंकि मैं अपने प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ और शिक्षा मंत्री भी हूँ, और मैं ऐसे प्रदेश चारक कहूँ कि जहाँ की गंगा भी है, अलकनंदा भी है, हमारे यहाँ पंच केदार भी हैं, पंच प्रयाग भी हैं, पंच बद्री भी हैं, हमारा प्रदेश जो है बहुत खूबसूरत प्रदेश भी है। और वहाँ से जब मुझे ये आदेश हुआ कि आपको इस सम्मेलन में ज़रूर आना है, तो मैं सच बोलूँ तो मैं पहले तड़का रहा था कि जाऊँ कि न जाऊँ, लेकिन मेहरचंद जी का बहुत आग्रह था कि एक बार आप मोहन टापू देख के जरूर आइए। तो मैं जब यहाँ आया तो मैं आज सबसे पहले सम्मेलन में जब प्रतिभाग होने यहाँ पे आया, उसके बाद मैं 2 घंटे यहाँ के किचन देखने के लिए गया, और जब मैंने किचन देखा यहाँ का तो 40,000 लोगों को इकट्ठा वहाँ पे खाना बन रहा है। 1 घंटा मैंने पूरा दौरा किया वहाँ का, और मैं लगभग काफ़ी स्थानों पे यहाँ आज घूमने भी गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार उत्तराखंड में बैठ के हमको ये पता नहीं चलता है कि माउंट आबू में इतना बड़ा संस्थान चल रहा है, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है बिना तनख्वाह के, बिना किसी इच्छा के, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे वैश्विक सम्मेलन में एक बार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए सब लोग यहाँ पे ताली बजा के आप सबका स्वागत करेंगे। जहाँ तक भारत की बात है तो आप सबको पता है कि भारत जो है विश्व का सर्वोर देशों में से एक देश कहा गया था, हमको सोने की चिड़िया हमको कही गई थी। और धीरे धीरे हम सबको पता है कि यहाँ आक्रंताएं, यहाँ की संस्कृति से लेके धर्म से लेके कई चीजों हमको पीछे होते गए। लेकिन अब आपको सबको पता है कि हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है और इसमें जितनी भूमिका हम सबकी है, प्रत्येक व्यक्ति की है, उतनी भूमिका ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हमसे ज्यादा है जो कि इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। और आपका भारत तो नहीं, पूरे विश्व में लगभग 125 देशों में आपका काम चल रहा है और अनवरत चल रहा है। मुझे ये भी बताया गया कि लगभग 65,000 लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि पूरा जीवन देके यहाँ काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो एक भी एक बड़ी प्रेरणा का विषय है कि पूरा जीवन समर्पित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और हम तो जिस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ तो ये तय यह है कि भाई नेतागिरी में तो अलग ही बात होती है। इसलिए मुझे बहुत आज अच्छा भी लगा है और मेले भी सच में जो अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिला है। हम लोग अभी तक जिन जिन लोगों को सुना, मैंने नेपाल के हमारे जज साहब बैठे हैं उनको भी सुना है, हमारे पहले सत्र में बहुत अच्छे विद्वान आए थे उनको भी सुना है। आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व की नज़र अब भारत पर टिकी है। आज भारत जो है पूरे विश्व की पांचवी अर्थशक्ति बन गया है। आज भारत का योग जो है देश के 200 देशों में लोग योग की तरफ चले गए हैं। आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, आज पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है। और इसलिए हम सबको नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमको इसको संभाल के भी रखना है, संवार के भी रखना है और अपनी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व का नेतृत्व भी हम सबको करना है। जहां तक हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि हम सर्व कल्याण की बात करते हैं, हम हर इंसान को ईश्वर के स्वरूप में देखते हैं। इसी कारण जो भी हमको काम मिलता है उसे हम ईश्वरीय काम समझकर या आदेश समझकर उसको पूर्ण निष्ठा से करने का जो है अपने मन में ठानते हैं और उसको हम संपादित करते हैं। ईश्वरीय विधान को केंद्र में रख के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य जो कि हम आज प्राप्त कर रहे हैं या कर सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको कोविड महामारी को बता सकता हूं। जब कोविड पूरे विश्व में आया तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, लेकिन तब भी भारत ने पूरे विश्व को जो है रास्ता दिखाने का काम किया। हम सब जानते हैं कि हमने अपने परंपरागत योग हो, प्राणायाम हो, आयुर्वेद हो, इन सबको करते हुए कोविड महामारी पर भी हमने विजय हासिल की है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जब G20 का सम्मेलन भारत की धरती पर आरंभ को मेजबानी करने का मौका मिला तो मैं एक चित्र आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी G20 के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राजघाट पे ले गए तो दृश्य देखने लायक था। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है जूते उतार के राजघाट पे गए। ये विश्व का नेतृत्व करने की पहली सीढ़ी हम जो है शुरुआत हमने कर दी है। और भाइयों बहनों, आज सामाजिक क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे कि इन 10 वर्षों में हमने जो विसंगतियां पैदा हो गई थी भारतवर्ष में, राज्यों में भी, आज हम धीरे धीरे अपने सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज हम प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जो है मकान देने का काम कर रहे हैं। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला के कनेक्शन देने का काम भी भारत जैसे देश में हो सकता है। 8 करोड़ जो है बिजली के कनेक्शन देने का काम भी भारत जैसे देश में हो रहा है। और इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो इन 10 वर्षों में भारत ने जो है सारे पायदान छू के आगे बढ़ गया है। आज देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं। हर दिन 1 डिग्री कॉलेज नया बन रहा है। और इतना ही नहीं, आज हर राज्य में नए एम्स खुल रहे हैं। जितने अमेरिका की जनसंख्या है उतना भारतवर्ष जो है आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री करा रहे हैं। ये भी भारत जैसे देश में हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है कि हमको सामाजिक बोध से नए युग की तरफ जो है जो भारत को ले जाना है वो कैसे ले जाया जा सकता है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बड़ा है और जितनी सामाजिक संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी देश में इतना काम हो रहा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले 24,000 बच्चे MBBS करते थे, आज 1,10,000 बच्चे हर साल MBBS कर रहे हैं। पहले भारतवर्ष में 19,000 बच्चे MD करते थे, आज 50,000 बच्चे MD का कोर्स कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भारत जो है विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको वैचारिक मतभेद भुला के और देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमको जरूर मंथन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर सामाजिक कामों के लिए अगर हमको कहीं कोई सीख सीखनी है तो हमको जीवन में एक बार जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3-4 दिन का कोर्स जरूर करना चाहिए कि आप लोग मनुष्य के लिए जो है परम वैभव तक ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और मैं कह सकता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही सुंदर काम है कि आप लोग जो संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। मैं अपने राज्य में जब नशा मुक्ति के लिए मैंने एक अभियान चलाया तो मुझे मेहरचंद जी का एक दिन फोन आया कि मंत्री जी, मैं अपनी संस्था को जो है एक MOU करना चाहता हूं कि हम नशा मुक्ति में आप लोगों का साथ देना चाहते हैं। और मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि 15 लाख लोगों ने अभी तक हमारे राज्य में नशा मुक्ति की ओर जो है शपथ दिलाई गई है, उसमें ईश्वरी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जो वैचारिक अधिष्ठान से लेकर बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं, यही नया भारत है और यही नया भारत जो है विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाह रहा हूं। भारत माता की जय।
बहुत बहुत शुक्रिया माननीय भ्राता धन सिंह रावत जी। अनुरोध कर रही हूं आदरणीय मृत्युंजय भाई कि मंच पर आकर के हमारे माननीय मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन एंड हेल्थ उत्तराखंड का सम्मान करें। और साथ ही सुषमा बहन जी से भी अनुरोध कर रही हूं, कृपया मंच पर सामने आ जाएंगे। Thank you.
भ्राता जीएसपी वीरा रेड्डी चेयरमैन जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ज्वेल ऑफ भारत का सम्मान स्वीकार करें भ्राता वीरा रेड्डी जी। और इसके साथ ही भ्राता गोपाल भाई सूतरिया फाउंडर बंसी गिर गौशाला गुजरात गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड मंच पर आकर के स्वीकार करें। भ्राता शिव शंकर रेड्डी जी एंड मिसेज शिव शंकर रेड्डी जी को चेयरपर्सन जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आकर के मोमेंटो स्वीकार करें। बहन अस्मिता सिंह एडिटर एंड एंकर भारत एक्सप्रेस नोएडा से अनुरोध है कृपया मंच पर सामने आकर के विद्यालय की तरफ से मोमेंटो स्वीकार करें। भ्राता रजनीकांत सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर भारत एक्सप्रेस नोएडा कृपया मंच पर सामने आइएगा और सम्मान स्वीकार कीजिए। भ्राता कुलदीप सिंह असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस नोएडा से अनुरोध है कृपया सम्मान स्वीकार कीजिए। बहन शर्मिला ओसवाल चेयरपर्सन इंडिया मिलिट मिशन दिल्ली मंच पर आकर के सम्मान स्वीकार कीजिए। बहन दीप्ति सैनी मिसेस इंटरनेशनल 2018 से अनुरोध है कृपया मंच पर आकर के सम्मान स्वीकार करें। ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर नेहाकुल सुबेदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल भ्राता मृत्युंजय भाई को सम्मान के रूप में एक मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं भ्राता मृत्युंजय भाई को नेपाल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ब्रदर डॉक्टर नहाकुल सुबेदी जी सम्मान कर रहे हैं। बहन अस्मिता सिंह से अनुरोध करती हूँ एडिटर एंड एंकर भारत एक्सप्रेस नोएडा से अपनी ग्रीटिंग्स आज के शुभ अवसर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें।
ओम शांति। जितने भी माननीय अतिथिगण यहाँ मंच पर मौजूद हैं और जो भी सामने हमारे यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं और अपना कीमती समय हमें देकर यहाँ पर और हमें खुशी प्रदान कर रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ सबसे पहले। और ब्रह्म कुमारी जो कि एक बहुत जहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत सुकून है यहाँ पर। जब से मैंने सुना था मेरे दिल में एक ही चाहत थी कि एक बार तो मैं यहाँ आऊँ और इस मंच पर आकर जिस तरीके से मुझे सम्मानित किया गया है मैं दिल से बयां नहीं कर सकती। दिल से खुशी हो रही है और मैं बार बार यही कहूँगी कि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है धैर्य की, जो कि मैंने सबको सुना। हो सकता है मैं सबसे यहाँ छोटी होंगी लेकिन जब सबकी बात मैंने सुनी तो मैंने समझा एक चीज़ कि शांति धैर्य सुकून ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। और जब बात सुकून की आती है तो हम कोशिश में हमेशा यही रहते हैं कि जहाँ हमें सुकून मिले हमें वहीं जाना चाहिए और जिनसे हमें बात करने में खुशी मिले हमें उन्हीं के साथ टच में रहना चाहिए और नेगेटिविटी को हमेशा खुद से दूर रखना चाहिए। पॉजिटिविटी को जितना हो सके हम अपने अंदर ग्रहण करें उसकी हमें अपने अंदर रखनी चाहिए चाहत। देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं मीडिया में ही हूँ और कई तरीके की चीज़ें हम फेस करते हैं, ये मैं अपनी बातें आपसे साझा कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मन करता है कि कुछ ऐसी जगह चली जाऊँ, कुछ हिल स्टेशन चली जाऊँ, कई सारी चीज़ें होती है और लास्ट में थक हार कर मन करता है प्रभु के द्वार पर चली जाऊँ। तो मुझे लगता है कि इस स्थान पर आकर मुझे जो सुखद अनुभव हो रहा है वैसा ही अनुभव आप लोगों को भी हो रहा होगा। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आज महसूस करती हूँ, मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मुझे ये मंच मिला और इस मंच पर मुझे सम्मानित किया गया। सारे अतिथिगण यहाँ मौजूद है, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, मैंने सभी का सुना और मुझे लगता है मुझे इनसे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पर जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता बहन। अनुरोध कर रही हूँ भ्राता कुलदीप सिंह जी असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस नोएडा से अपनी शुभ भावनाएं आज के इस अवसर पर हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। ग्लोबल समिट 2023 में उपस्थित उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत जी, डॉक्टर बीके प्रताप मिदा जी, राजयोगिनी बीके ब्रिज मोहिनी भाई, राजयोगिनी बीके सुषमा बहन, अस्मिता सिंह जी, रजनीकांत सिंह जी, आज का टॉपिक है सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारी जो जिस पेशे से हम आते हैं पत्रकारिता से, वहाँ इतनी सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी शेड्यूल होता है, सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सुकून नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात तक पूरा दिन न्यूज न्यूज न्यूज, और उसके बीच में जब सुकून की बारी आती है तो लगता है कि बस अब अगले दिन से कोशिश करेंगे दोबारा से। मैं दो चीजें यहाँ पे खासतौर से कहना चाहूंगा। हमारे पिछले कुछ दिनों में दो न्यूज जिन्होंने सबसे ज्यादा विचलित किया है हमें, एक कोटा, कोटा में 17 से 20 साल के बच्चे, और किस तरीके से 17 साल 18 साल 19 साल में अपनी जिंदगी से हताश हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उसके पीछे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो वजह है, जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का मतलब जो हम स्कूल जा रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं, सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा का मतलब विज्ञान नहीं है, आध्यात्म से हम जितना दूर जा रहे हैं वो सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम अपने इतिहास पर थोड़ा भी गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बहुत बार सामने आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा जो चीजें थी वो आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। तो जब मुगल आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने सबसे बड़ा हमला हमारी आध्यात्म के ऊपर किया कि भारत की जो संस्कृति है उसको किस तरीके से धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। मंदिरों पर हमले अलग था, लेकिन आध्यात्म से दूर करने के लिए सबसे बड़ी जो उनकी चीज थी वो हमारी लाइब्रेरी को खत्म करना था। मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है उस नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा विश्वविद्यालय, जिसकी ब्रांचेस 140 देशों में हैं, उसको दोबारा से स्थापित करने का ये काम कर रहा है। आने वाले 10 साल 20 साल में पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऐसी संस्था होगी जिसने इस पूरी विश्व को सबसे ज्यादा आध्यात्म की ओर ले जाने का काम किया होगा। अभी भी है और आने वाले टाइम में ये काम और तेजी से होगा। यहाँ मुझे एक चीज की कमी जरूर नजर आई कि यहाँ पे मुझे थोड़े जो यंग जनरेशन है उसकी थोड़ी कमी महसूस हुई। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं खुद को, हमारे समाज को, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उसको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति रही है, हम बार बार नाम लेते हैं अभिमन्यु का कि अभिमन्यु ने कोक में सीख ली। अगर अभिमन्यु की संस्कृति को हम लेके आगे बढ़ते हैं कि अभिमन्यु ने कोक में सीख लिया, तो जो छोटे बच्चे हैं हम उनको आगे बढ़ के क्यों, उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है ये उस बच्चे को किसी ने नहीं बताया। गायत्री मंत्र उसको सिखाया, स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हुई, उसने गायत्री मंत्र बोला, हनुमान चालीसा बोली, लेकिन उसका सही मायने में अर्थ क्या है, जब तक बच्चा उसका अर्थ नहीं समझेगा तो उसके लिए उस हनुमान चालीसा, उस गायत्री मंत्र का कोई महत्व नहीं है। मेरा सभी से ये कहना है कि आप छोटे बच्चों से ही, बच्चे से लेके और जब वो स्कूल में है कॉलेज में है, आप कम से कम इतना कीजिए कि उसको थोड़ा टाइम आप निकालिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के जो ब्रह्म कुमारी है और भी कई रास्ते हैं वहाँ आप उसको लेके जाइए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा, मैं समझता हूँ कोटा के बच्चों को अगर मिली होती, जो आज वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं कि मंदिर में जाके आप अपनी जो है परेशानियां बता सकते हैं, और आप यकीन मानिए जब वो मंदिर शुरू हुआ जिसके बारे में खबर आई थी कि उसकी दीवारों पर बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स लिख दी, एक दिन के अंदर उसकी सारी दीवारें उनकी समस्याओं से भर गई। अगर ये चीज़ उनको स्कूल में किसी ने बताई होती, कॉलेज में बताई होती, तो शायद ऐसा लगता है कि हम कम से कम इस समस्याओं से उनको दूर कर पाते। किसी भी माता पिता के लिए एक बच्चा या बच्ची की मौत, इससे बड़ा दुख पूरी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी कोशिश रही होती, हमारे समाज की कोशिश रही होती, कभी हमने उसको समझा होता, उसको इतना समय दिया होता कि आप ईश्वर को पहचानो, आप खुद को पहचानो। हमारी जब भी हम कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं कि हम ईश्वर ने इंसान बनाया, ईश्वर ने पशु पक्षी सब लोगों को बनाया, लेकिन ये ताकत, ये ज्ञान सिर्फ इंसान को दिया कि आप ईश्वर को समझ सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं उनके लिए, और किसी के लिए नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पहचानने वाली बात है ये है कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और धन सिंह रावत जी बैठे हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मंत्रालय इनके पास हैं, तो मानसिक शिक्षा की भी बात या होनी चाहिए कि मानसिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक मानसिक शिक्षा की बात नहीं होगी तब तक जो है बच्चों के ये जो समस्याएं सामने आ रही हैं ये इसी तरीके से आती रहेंगी और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर इन चीजों को दूर करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग, एजुकेशन विंग, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए इस प्रकार के कैंप्स और रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करती ही हैं। अनुरोध करती हूँ भ्राता गोपाल भाई सुतरिया जी से, कृपया अपनी शुभ भावनाएं चंद शब्दों में हमारे समक्ष रखें।
वैश्विक शिखर सम्मेलन निमित्त मंचस्थ सभी महानुभव और उपस्थित सभी भाई बंधु और बुजुर्गों को मेरा ओम शांति, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सर्वांगी विकास होना चाहिए सभी विषय के अंदर, बैलेंस विषय होना चाहिए। गाय आधारित कृषि के ऊपर हम काम करते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने कहा था कि गाय और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो अब गाय आधारित कैसे सच्चा विकास हो उस पर कई प्रकार के आरएनडी किए 17 साल में। गौ आधारित किसान 7 दिन में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद हो सकता है। ये हमारी गौशाला है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये 8 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, आप साइज देख सकते हैं। जब शोषण नहीं होता है तो ये विकास होता है। तो किसी का भी शोषण किए बिना जो विकास किया वही विकास सच्चा प्रकृति में, किसी का भी शोषण नहीं करना है और सर्वांगी विकास होना चाहिए। तो ये प्रकार की साइज होती है और अच्छा सच्चा विकास करते। हमने 125 घासों पे आरएनडी किया अब तक, तो खाली 12 एकड़ में हर रोज 10 टन चारा काट रहे, वर्ल्ड का हाईएस्ट उत्पादन ले रहे। तो बाउंड्री पे घास उगाना तो वो घास की गठाने अपन फ्री देते। तो मैं पहले तो हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूंगा ब्रह्मा कुमारी परिवार का, मुझे सम्मानित किया और मौका दिया। ये कुछ औषधि है कि कैसे गाय को निर्दोष औषधियां खिला के उसके रेसिड्यूज दूध में आते, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सबका भला होगा। नेक्स्ट, ये है किसान कर्नाटक का, वो पूरा खर्चा निकाल के प्रति एकड़ 6.5 लाख रुपया कमा रहा है। हमारी पद्धति हमने तैयार करी है गौ आधारित। तो आज यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड सब मिलके देश का 15 लाख करोड़ हर साल का खर्चा है, वो सारा इस पद्धति से जीरो हो सकता है 7 दिन में। और ये किसान ने काफी बंदों को सिखाया और रस्ते पे घूमती हुई गाय 150 से ज्यादा गाय को प्रबंधन करने की तैयारी कर ली उन्होंने। तो आप देखिए सबसे सेंसिटिव क्रॉप दाड़िम, उसके ऊपर 1.5 लाख खर्चा होता है, वो भी इसके अंदर हो गया। ये पपीते। नेक्स्ट, ये किसान है, सब लोग एक भ्रम फैलाया कि जैविक करेंगे ऑर्गेनिक करेंगे उत्पादन घट जाएगा, तो अभी की स्थिति ये है। तो हमने ऐसे प्रोटोकॉल तैयार किए कि केमिकल जितना, केमिकल से डबल और केमिकल से 3 गुना। ये किसान ने 110 टन गन्ना उगाया जो भारत का अभी एवरेज है 30 से 35 टन, उससे 3.5 गुना उत्पादन गौ आधारित लिया हुआ है। तो ये पद्धति है कि मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की पद्धति को हम निशुल्क सिखाते हैं। हमने पंचगव्य को आयुर्वेद और शास्त्रों में से सीख के उसके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और पंचगव्य में से एक ऐसा कल्चर तैयार किया कि वो हवा में से ही सीधा नाइट्रोजन दे देगा, खाद को कंपोस्ट कर देगा। गोबर के एनालिसिस करे हमने, 1200 कंपाउंड निकले उसके अंदर। गौमूत्र के एनालिसिस करे देसी गाय के, 5100 कंपाउंड निकले। वो खा करके जब पौधा पोंखता है तो अनमैच्ड होता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार के जब किसानों के मॉड्यूल सामने आते हैं तो पिछले 22 मतलब ऐसा कह सकते कि 5 साल में हमने 22 राज्यों में काम किया, 550 से ज्यादा शिविर करी, 7 लाख से ज्यादा किसान से जुड़े हुए और आज मेरी चंद्रेश भाई और सभी बंधु से बहुत अच्छे से बैठक हुई। तो गौ आधारित ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ऐसा मॉडल होकर के पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसे तैयार हो जाए कि हम लोग ने जैसे ये कल्चर तैयार किया उसका विल बना दिया है कि हमारा या अगली पीढ़ी का अधिकार नहीं रहेगा, पूरे विश्व के गाय और किसानों को ये समर्पित रहेगा और इसके द्वारा पूरी दुनिया में किसानों के घर पे सुखाकारी आए। मैं आपको विनती करता हूं कि जहां किसान मिले उसको सम्मान करना है, क्योंकि उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी बोला है, उसका आज के लोग उल्टा कर रहे हैं। आज किसान हमें खाना खिला रहा है, आज गाय हमें दूध दे रही है, उसकी हालत क्या है? तो वो स्वाभिमान से गांव में कैसे टिक जाए? उनको ऐसी विद्या बचपन से सर्वांगी विकास वाली कैसे मिले कि हाँ मैं जो कार्य कर रहा हूं दुनिया का श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं, और उसको आर्थिक व्यवस्था हो जाए, ज्ञान की व्यवस्था हो जाए, उसको सम्मान मिल जाए, तो गांव का बच्चा गांव में टिक करके स्वाभिमान से सही भारत का निर्माण होगा। तो उत्तम खेती मध्यम व्यापार को वापिस अगर हमें लाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। आप सभी को मैं विनती करता हूं कि आपके मूल गांव में जो भी बंधु रहते हैं उनको जब भी सिखाना है तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, और हम बंसीगिर गौशाला अहमदाबाद है, गोपाल भाई सुतरी आप नाम डालेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो ये पद्धति हम पूरा निशुल्क अभियान है, निशुल्क सिखाते हैं, और एक समय की मर्यादा के हिसाब से मैं एक मिनट में खाली पूर्ण करता हूँ कि गाय आधारित हम लोग ने फार्मेसी बनाई है, 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है। गौमूत्र के अंदर ऐसे केमिकल्स प्राप्त हुए जैसे कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारे कुदरती स्वरूप में मिले, महाऔषधि बोला है। गोल्ड के पार्टिकल्स नैनो फॉर्म में पाच्य स्वरूप में है, तो सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में बोला है, तो वो बिल्कुल मिला है। कच्चा दूध दुनिया का श्रेष्ठ आहार है, कच्चे दूध को मैं इतना कह सकता हूं कि संपूर्ण आहार आयुर्वेद में सिर्फ कच्चे दूध को बोला है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कैसे खाना। कच्चे दूध या दूध के साथ कोई सब्जी जमता नहीं, विरुद्ध आहार हो जाता है। दूध के साथ कोई फल नहीं जमता, विरुद्ध आहार हो जाता है। सिर्फ एक ही सब्जी परवल, वो भी घी में बना है, तो ये ज्ञानी चला गया, बड़े बड़े डिग्री धारक है, लेकिन क्या खाना कैसे खाना पता नहीं है। तो ये बेसिक नॉलेज से जब बच्चों का विकास होता है तो खुद स्वस्थ रहेगा, दूसरों को भी स्वस्थ रहेगा, और भारत का सही निर्माण गाय आधारित ज्ञान, गाय आधारित स्वाभिमान से स्वास्थ्य, गाय आधारित हमारा अध्यात्म, उसको समन्वय करेंगे तो दुनिया के वापिस हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। और फिर से मैं धन्यवाद कहूंगा कि मुझे ये मौका मिला, और वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, आखिर में श्री कृष्ण भगवान और शिव जी ने सबसे ज्यादा गौ माता को सम्मान दिया है उनको, मतलब ऐसा कहते हैं शिव जी की हर एक मंदिर के बाद नंदी जी की मूर्ति होती है। और कृष्ण भगवान को भी पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कौन से पल में आया था, उन्होंने कहा था कि मैं जब गाय चराने जाता था, गौधोड़ी वेला जब वापस आता था, मेरी पूज्या गायों के पैरों की धूल से जो गौधोड़ी उड़ती थी उससे मैं नहा जाता था, वो जो आनंद आया मुझे कभी नहीं आया। तो आइए मिलकर वापिस पुनः सात्विक भारत का निर्माण करें, और पूरे विश्व गुरु को वापिस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे गाय आधारित। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमारीज की, रूलर विंग भी इसी प्रकार से जैविक खेती का बहुत अच्छा एजुकेशन, ट्रेनिंग्स और टीचिंग्स देती है। अनुरोध करती हूँ भ्राता जीएसपी वीरा रेड्डी, चेयरमैन जीवीपीआर इंजीनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद, अपने इंस्पिरेशंस हम सभी के समक्ष रखें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माई जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेनली वाटर सप्लाई वर्क्स वी आर डूइंग, 11 स्टेट्स वी आर डूइंग द वर्क्स इन पाइपलाइन वर्क्स, दिस इज द थिंग। थैंक यू।
शुक्रिया, शॉर्ट एंड स्वीट। अनुरोध है भ्राता मोहन भाई सिंगल से, अपने इंस्पिरेशन हम सभी के समक्ष रखें। आप चेयरपर्सन साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारी के हैं।
ओम शांति। मंच पर विराजित सम्मानित विद्वान वक्तागण और सभा में उपस्थित भारत तथा नेपाल के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी बहनों और भाइयों, आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और आज का विषय बहुत ही सार्थक और वर्तमान समय से लगता हुआ है, सामाजिक आर्थिक प्रगति परिवर्तन के लिए ईश्वरीय श्रीमत। इस संदर्भ में मैं इस इंस्टीट्यूशन के जो साकार संस्थापक हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनकी बात कुछ करना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं तथा उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आज का विषय स्पष्ट परिवर्तन का जो है वो दृष्टिगोचर होता है। हम सब ने सुना है कि गॉडली विजडम जो है इसमें एक ही विशेष पहलू है। नॉर्मल केस में अधिकतर ये कहा जाता है कि जीवन के दो पहलू होते हैं हर बात के, एक अच्छा पहलू और दूसरा कुछ बुरा पहलू, नकारात्मक पहलू। लेकिन गॉडली विजडम जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, उसमें एक ही बात पर विशेष बल दिया जाता है कि उसका एक ही पहलू विशेष है, आज जो भी हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो अभी तक हुआ है वो भी अच्छा। इससे क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। और आज के मेडिकल डॉक्टर तो बोलते हैं हेल्थ का पहलू के लिए कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक फैक्टर्स, उसमें ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इंसोम्निया आदि आदि सब प्रकार के। तो आर्थिक पहलू के साथ साथ जो समाज का वर्तमान समय एक विशेष सबसे बड़ी समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की। और हम सब देख ही रहे हैं जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, अथवा जल का जो प्रकोप पूरे भारत इन्हीं विश्व में भी हो रहा है, जितनी भी समस्या हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उन सब का एक मुख्य कारण एक यही है वनों का कटना। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक कदम और आगे ले जाता है कि विश्व की सभी समस्याओं का मूलभूत कारण है पांच विकार। जंगल भी इसलिए काटे जा रहे हैं कि आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो गया है उसको अधिक से अधिक मकान चाहिए, जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए, फर्नीचर चाहिए, और उसके लिए है मनुष्य का मुख्य काम वासना विकार, जिसके कारण अधिकतर समस्याएं होती हैं जो कि काफ़ी वक्ताओं ने रखी हैं। इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उन सब का भी एक विशेष कारण क्रोध और अहंकार और एक अपनी सत्ता का दुरुपयोग, बड़ा देश छोटे को कंट्रोल करना चाहता है आदि आदि। तो देखा जाए विश्व की सभी समस्याओं का मूलभूत कारण है ये मनुष्य के अंदर के पांच विकार। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर विशेष बल दिया है, जो G20 की अध्यक्षता की उसका भी एक मुख्य स्लोगन रखा वसुधैव कुटुम्बकम। अगर ये सभी हम सब वसुधा को कुटुम्ब की तरह समझें, और वसुधा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते जो अधिकतर समझा जाता है, वसुधा में तो मनुष्यों के अलावा प्रकृति के पांच तत्व, पशु पक्षी जीव जंतु सभी आते हैं। और देखा जाए तो वसुधा वसुधैव कुटुम्बकम हमारे सबसे छोटे प्राणी हैं, ये पेड़ पौधे जो जीवन पर्यंत माँ की छाती से लगे रहते हैं, ये यंगेस्ट मेंबर ऑफ वसुधा हमारा। इसके बाद जो रेंगने वाले जो जानवर हैं, चार दो हाथ दो पैर से चलने वाले जानवर, और सबसे एल्डेस्ट मेंबर है मनुष्य। तो इसीलिए हमें वसुधैव कुटुम्बकम की फैमिली को इस तरीके से संजोना है जैसे कि ये वसुधैव कुटुम्बकम की ओरिजिनल भावना है, उसमें रह करके अगर हम सब अपना जीवन करेंगे। और बाबा के जीवन के साथ मुझे ये रहने का सौभाग्य मिला लगभग 6-7 वर्षों तक। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा का जीवन पूरी तरीके से वसुधैव कुटुम्बकम के जीवन जो कहावत है उसके साथ साथ चला। पूरे वसुधा चाहे पशु पक्षी जीव जंतु डरावने जानवर कोई भी हो, हर एक के प्रति बहुत उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं, समय के अभाव में तो यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी वर्तमान समय केवल भारत सरकार नहीं बल्कि विश्व के सभी लोगों ने G20 में जो पार्टिसिपेशन किया और इस बात को माना, वो बाबा के जीवन से प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती थी। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी ये देखा गया है, भारतीय संस्कृति ने भी इसी बात को एक विशेष बल दिया है, जियो और जीने दो। एक ये जो बात कही है वसुधैव कुटुम्बकम के साथ, उसके अंदर यही बाबा के जीवन से दृष्टिगोचर पूरा होता था। बस बहुत लोग आते थे, इतना बड़ा यज्ञ की संभाल बाबा करते थे, मैंने व्यक्तिगत खुद देखा है 7 वर्षों में जब बाबा के साथ रहा। तो कोई भी गलतियां तो होती हैं, यज्ञ में नुकसान भी होता था, लेकिन बाबा उसको शिक्षा देने के साथ साथ लव एंड लॉ का बैलेंस, लेकिन लॉ भी विद लव स्नेह, और पहले उसका मेंटल लेवल हाई करके उसको रिसेप्टिव लेवल पर लाते थे, देखो तुम्हारे द्वारा ये यज्ञ को फायदा हुआ आदि आदि, और जब उसका मेंटल लेवल रिसेप्टिव हो जाता था तब उसे जो भी शिक्षा देते थे वो तुरंत स्वीकार करके उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता था. अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड करेक्शंस इन प्राइवेट. इस प्रकार से बाबा के जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं. अगर हमें अपने जीवन में जियो और जीने दो का सिद्धांत रखेंगे तो कभी भी फैमिली डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तलाक नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं. क्यों? क्योंकि हर एक बड़ा सत्ता वाला अपने से छोटे को चलाना चाहता है. अब बाबा ने कहा नहीं, सबको जीवन के साथ जीने का अधिकार है. आप सबके को भी मैं आशा करता हूँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में जितना आएंगे बाबा के जीवन के और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सभी जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त होगी और हम बहुत जीवन में प्राप्त कर सकेंगे. धन्यवाद. ओम शांति.
बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हम अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं. बहन शर्मिला उसवल जी, चेयरमैन इंडिया मिलेट मिशन दिल्ली से अनुरोध करती हूँ अपना वीडियो प्रेजेंटेशन करें और इसके साथ ही MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रह्मा कुमारीज एंड गुड मॉम मिलेट मिशन to transformation to a healthy lifestyle under IIMR Government of India ka bhi isi samay kiya jayega. Kuch hi samay hai, 9 se 10 baje. Bahut sundar isi sthan par culture program hai. Diamond Hall ke piche Rajyoga Thought Lab ki exhibition lagi hui hai. Sabhi bhai behno se anurodh hai ki wo kal kisi bhi samay उस एग्जीबिशन को देख सकते हैं. बहन शर्मिला जी.
It aims to make organic food more accessible and affordable. During the pandemic period, social entrepreneur and environmentalist Sharmila Oswal's house turned into a melting pot of discussion for a social venture that aims to ensure access to and affordability of organic and healthy food. As the MD of One Organic, Sharmila leverages the natural farming practices of over 2 lakh farmers and more than 4,000 tribal families across India. A food security and water specialist since 1995, she has worked with farmers from nooks and corners of India, including Leh, Ladakh and tribal regions of Meghalaya. Based in Pune, One Organic has domestic and international certifications from the European Union and sells in partnership with Reliance Retail as well as its own website. The entrepreneur says the startup has recorded 50% growth in 6 months of operation. Sharmila fought for her education and studied by securing scholarships both in India and abroad. She went on to secure scholarships to pursue Bodhan Leadership Program from the National University of Singapore and earned a position as a water diplomat at Tufts University. She has been working closely with farmers from across the country through her non-profit organization, Green Energy Foundation.
ओम शांति. यू तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यू तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं. मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन, मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों लेकिन, जिंदगी सिर्फ उन्हीं की है जो मरकर भी जिया करते हैं. आज ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य धरा को मैं नमोस्तु करती हूँ, वंदन करती हूँ और ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद से आज मिलेट वुमन ऑफ इंडिया का मिलेट मॉम या मिलेट मॉन्क. मैं चाहूंगी कि अगर मन की बात की अगर एक क्लिंस है 20 सेकंड की अगर एक जस्ट दिखाई जाए तो वो है मिलेट फार्मिंग और हमारा देश जो मिलेट की ओर बढ़ रहा है, मोटा अनाज. मे आई हैव द ऑडियो प्लीज? और तब तक मैं, जब तक वो क्लिप शुरू होती है, मिलेट है क्या? मिलेट जो कि है मोटा अनाज, आप सबको तो पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. क्यों 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा गया? ऐसी क्या दुनिया में आग लग गई कि सडनली सब जगह मिलेट 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 की बात हम करने लग गए? तो 97th एपिसोड मन की बात, थोड़ा आवाज करिए प्लीज।
किनाड़ गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट की उपज बढ़ी है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।
थैंक यू, हम आगे नहीं जाएंगे, स्टॉप करिए। तो ये जो मोटा अनाज है ये हम सबको पता है, राजस्थान की भूमि पर है, तो बाजरा आप सबको पता है, ज्वार बाजरा रागी, पर मिलेट सिर्फ यह तीनों चीज नहीं है। इन तीनों के अलावा जो है वो है पॉजिटिव मिलेट, जिसे हम कहते हैं कुटकी, सामा, चेना, वरई, भगर, प्रोसो, बानियार, कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट। ये नाम जैसे ही सोफिस्टिकेटेड हो जाती है इसके भाव जो है वो आसमान को छूने लगे। सबको ऐसे लगने लग गया कि मिलेट इतना एक्सपेंसिव हो गया है, कैसे खरीदे। तो ये वो पॉजिटिव मिलेट्स है जिससे भाइयों आपका डायबिटीज 100% रिवर्सल हो सकता है। ये वो अनाज है, ये वो ग्रेन है जो हजारों साल पहले 500 BC से जो शुरू हुआ। अगर आज हमारे मंदिरों में भी देखेंगे तो आपको गेहूं नहीं दिखेगा, गेहूं हमारा था ही नहीं कभी। 1960 की हरित क्रांति जो थी उसके जरिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भारत में हुई। तो जो जवार बाजरा रागी जो था वो पॉलिसी में से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा हम भूल गए, हट गए और वहां की जगह ले ली गेहूं और चावल ने। और क्यों ना हो, किसानों को MSP जो मिल रहा है या इंसेंटिवाइज जो मिल रहा है वो सारा गेहूं और चावल है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, गेहूं बैन हो गया, चावल बैन हो गया, शुगर भी बैन हो गई, ये क्यों हो रहा है? उसमें आप देखेंगे यूक्रेन को वॉर ले लीजिए या दुनिया में जो चल रही फूड सिक्योरिटी का इश्यू। तो मिलेट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस में 72 कंट्रीज ने भारत के इस प्रस्ताव को अगर एक्सेप्ट किया तो क्यों किया? इसलिए किया जबकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में यह एक पशुओं का आहार कहा जाता है, जवार बाजरा कोई इंसान खाता नहीं है, पर सब देशों ने यह मान्य कर लिया। आपको मैं बताना चाहूँ, व्हाइट हाउस, आई एम द आई विटनेस, कि व्हाइट हाउस का मेनू पूरा मिलेटियन था, पूरा मिलेटमय था। हमने प्लांट बेस्ड मेनू बनाया इंडिया में, G20 पूरी दुनिया में हमने वेजिटेरियन मेन्यू बनाया। मिलेट 70 डिशेज जो थी वो मिलेट की थी और उसके जरिए क्या किया, इंडिया, भारत हैज मेड इट्स ओन बेंचमार्क टू द वर्ल्ड फॉर द सस्टेनेबिलिटी, फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड बीइंग द कार्बन न्यूट्रल। हम सिर्फ बातें करते हैं पर इंडिया ने अपनी एक ब्रांडिंग तगड़ी करके दिखाई, इजंट इट? G20 को वेजिटेरियन करके हमने दुनिया में एक पूरा हमने अप्रूव कर लिया कि इंडिया सिर्फ बोलता नहीं है, इट्स वॉक द टॉक। तो ये जो मिलेट है इसके फायदे अनन्य साधारण है। मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी के साथ आज हम एक MOU एंटर कर रहे हैं जिसके जरिए यहाँ पे देखिए इस पावन भूमि पे इतने सारे भाई, इतने सारे सिस्टर जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व दिया है। सरहद पे जो सिपाही लड़ता है वो इस देश की रक्षा के लिए लड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ता है, पर हम जो मिलेट के लिए काम करने वाले किसान हैं या मिलेट के लिए काम करने वाली जो जनता है, हम इस देश की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। और आज ब्रह्मा कुमारी के साथ यह एक बहुत बड़ा पावन प्रसंग हम करने जा रहे हैं कि इस पावन भूमि से इस मोटे अनाज को प्रमोट किया जाए। यहाँ तक कि राजस्थान में मैं बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ महीनों पहले यहाँ पे मीडिया के कुछ भाई भी बैठे हैं, इंडियन एक्सप्रेस से वगैरह की, जिन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था कि राजस्थान के किसान जो सबसे ज्यादा बाजरा उगाते हैं तो मार्केट्स कहाँ है? मार्केट्स आर देयर, मार्केट लिंकेजेस आर देयर, जरूरत सिर्फ इतनी है कि ये जो एग्रीगेटर्स हैं मार्केट लिंकेजेस को कैसे कनेक्ट किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी पहल जो की है वो ब्रह्मा कुमारी ने की है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये वो मिलेट है जिसमें हाई फाइबर्स है जिसके जरिए आपका डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका मोटापा, आपकी बहुत सारी चीजें। मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी, 4 साल पहले आई वॉज ऑन इंसुलिन, दिन के 3 इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन, ये सारी चीजें आज जीरो पे आ गई है विद द इंक्लूजन ऑफ मिलेट डाइट। अगर आपके डाइट में मिलेट शामिल हो, मैं 21 दिन का आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि आप 25% आपके खाने की थाली में आप ज्वार को ले लीजिए, बाजरा को ले लीजिए, रागी को ले लीजिए, सामा, कुटकी, चेना, वरई, भगर, आप कोई भी ले लीजिए, सिर्फ 25%। ऐसा नहीं कि थाली भर के आपको मिलेट खाना है। तो ये मिलेट की शुरुआत हम ब्रह्मा कुमारी से करने जा रहे हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री है, फाइब्रस है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें फाइटिक एसिड है, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो मैं पूजा बहन, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, सिस्टर, मैं यहाँ तक कि यीशु दीदी जो कि ORC से है, जिनके कोऑर्डिनेशन से मैं महामृत्युंजय जी भाई जी से मिली, मैं जो कल रात को भी हमारा एक जो सेशन हुआ ब्रिजमोहन जी के साथ, उन्होंने 10 मिनट में गीता का सार पूरे लाइफ का दिया, तो बहुत ऋणी है। इट्स इंडीड ग्रेटिट्यूड फ्रॉम इंडिया मिलेट मिशन टू ब्रह्मा कुमारी फॉर एंटरिंग इन टू दिस MOU एंड स्टार्टिंग दिस स्मार्ट फूड रिवोल्यूशन, जिससे इस दुनिया की एक रफ्तार बदलेगी, एक कारवा बदलेगा। और देखिए, आने वाले कुछ समय में, आज हम इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब ब्रह्मा कुमारी इसका हब बन जाएगा, तो इंडिया को, भारत को कोई नहीं रोक सकेगा ग्लोबल मिलेट हब बनने के लिए। जय हिंद।
ओम शांति। थैंक यू सो मच शर्मिला ओसवाल बहन। और जैसा कि अभी बहन ने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान और उनके साथ गुड मॉम अ सोशल एंटरप्राइज बाय बासिलिया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड इनक्यूबेटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो आज ये बहुत अच्छा MOU होने जा रहा है। और हम सभी देखेंगे कि मृत्युंजय भाई हमारे बीच में है और हमारी शर्मिला बहन हमारे साथ हैं।
अब हम अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। अनुरोध करती हूँ भ्राता मेहर चंद जी, सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज करनाल पंजाब से आभार का भार वहन करें, उसके पश्चात आप सभी भोजन के लिए प्रस्थान करके तुरंत 9 बजे यहाँ आ जाएंगे।
ओम शांति। आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर श्री धन सिंह जी रावत, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड, ने अपने विचार आपको विस्तृत रूप से दिए और उन्होंने MOU भी कराया है संस्था के साथ। पहली स्टेट है जिसने के व्यसन मुक्ति का MOU करा के दिया है, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनके लिए 4 लाइनें दे रहा हूं। हर लब पर तेरा नाम होगा, हर लब पर तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, देश की सेवा दिल से करते रहना मेरे दोस्त, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा, ये वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। हमारे बीच से हमारे दैवी भ्राता ब्रिजमोहन जी चले गए हैं, एडिशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारी, उनके लिए भी 2 लाइनें दे रहा हूं। कोई कहता है मैं क्या देखता हूं, कोई कहता है मैं क्या देखता हूं, तेरी सूरत में मैं ब्रह्मा बाबा देखता हूं, तेरी सूरत में मैं ब्रह्मा बाबा देखता हूं। हमारे बीच में हमारे सुषमा दीदी, जो कि जयपुर से ब्रह्मा कुमारीज के डायरेक्टर हैं, उनके लिए भी मैं 2 लाइनें दे रहा हूँ। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मदर वाणी अगर सुन ले तो सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे ये कभी हमने सुना था, बात सच निकली। फरिश्ते थे ये कभी हमने सुना था, बात सच निकली। हमें तो आप में दीदी जी भगवान का एक नूर दिखता है। हमें तो आप में दीदी जी भगवान का एक नूर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी जी का, उन्होंने मेडिटेशन कराया, आप सबको भगवान से मिलाया। हमारे बीच में डॉक्टर प्रताप मीडा जी जो एक ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनके लिए भी मैं उनके खिदमत में दो लाइन दे रहा हूँ। शुक्रिया शुक्रिया आप यहाँ पधारे, शुक्रिया शुक्रिया आप यहाँ पधारे। स्नेह सुमन से स्वागत करते शिव के राज दुलारे, ज्ञान सागर की फुलवाड़ी के तुम हो अनोखे फूल। ज्ञान सागर की फुलवाड़ी के तुम हो अनोखे फूल। स्वागत है सत्कार है करना डॉक्टर साहब दिल से कबूल, करना डॉक्टर साहब दिल से कबूल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हमारे बीच में दैव भ्राता मोहन सिंगल जी जो के साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने भी अपने विचार आप सबको दिए, मैं उनके लिए भी दो लाइनें दे रहा हूँ खिदमत में उनकी। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है। आज की हर खुशी सलाम करती है तुम्हें, आज की हर खुशी सलाम करती है तुम्हें। सच्चे दिल से शिव बाबा ने पैगाम भेजा है, सच्चे दिल से शिव बाबा ने पैगाम भेजा है। हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं गोपाल भाई, फाउंडर बंसी गिर गौशाला गुजरात, श्री GSP वीरा रेड्डी चेयरमैन GVPR इंजीनियर LTD हैदराबाद, मिस्टर अस्मिता सिंह एडिटर एंड अंचूर भारत एक्सप्रेस नोएडा, श्री कुलदीप सिंह असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस नोएडा, मिसेज शर्मिला ओसवाल चेयरमैन इंडियन मिलेट मिशन दिल्ली, इन्होंने सबने अपने शुभकामनाएं दी, इनके लिए चार लाइनें दे रहा हूं। आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे। इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें, इस सुनहरी घड़ी का था इंतजार हमें, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे, हम इसी दिन के लिए नगमे सजाए बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को जो संजो रहे हैं, दो दिन से आप देख रहे हैं, हमारे दैव भ्राता मृत्युंजय जी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो ब्रह्मा कुमारी, हमारी शिविका बहन कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं दो लाइनें दे रहा हूं। तेरी सूरत से न मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से न मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। काबे का इत्राम भी मेरी नजर में है, इत्राम भी नजारा, काबे का इत्राम भी मेरी नजर में है। सर किस जगह झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, सर किस जगह झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। धन्यवाद भ्राता जी का। इस मंच का बखूबी संचालन कर रहे हमारी शारदा दीदी जी, बहुत एक्टिव हैं, लायक हैं, विद्वान हैं, बहुत अच्छी स्पीकर हैं, मैं उनके लिए भी चार लाइनें दे रहा हूं। धरती सा धीर्ज दिया और आसमान सी ऊंचाई है, धरती सा धीरज दिया और आसमान सी ऊंचाई है, जिंदगी को तराश के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है, जिंदगी को तराश के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। ज्ञान गुण और शक्तियों से वो इनको भरते रहते हैं, ज्ञान गुण और शक्तियों से वह इनको भरते रहते हैं, उस खुदा की जीवत प्रतिमा को, उस खुदा की जीवत प्रतिमा को हम शारदा दीदी कहते हैं, हम शारदा दीदी कहते हैं। हाँ भाई बहने सोचेंगे हमारे लिए कुछ नहीं बोला, लास्ट में आपके लिए भी चार लाइनें दे रहा हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद है जो आप अब तक बैठे धैर्य रखकर, जिन्होंने पूर्ण धैर्य रखा वो अब सभा में उपस्थित हैं। आप सबके आगमन से मन चमन सा खिल गया, आप सबके आगमन से मन चमन सा खिल गया। कष्ट तो आपको बहुत हुआ होगा आने में, कष्ट तो आपको बहुत हुआ होगा आने में, परंतु गौरव हमारा बढ़ गया, गौरव हमारा बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आभार व्यक्त करने के लिए भ्राता मेहर चंद जी का भी बहुत बहुत आभार। अब एक मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठेंगे और फिर उसके पश्चात भोजन के लिए प्रस्थान करके 9 बजे पुनः कल्चर प्रोग्राम में आप सभी पधारेंगे। ओम।
Yeah.